તારીખ 27/2/1994 પૂજ્ય ભાઈશ્રી દ્વારા કલકત્તામાં તત્વચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 45.
अत्यंत भिन्नता का कथन आए तो ये अपने प्रयोजन के अनुकूल है, क्योंकि अपने प्रयोजन से प्रतिकूल तो थोड़ा है क्या, प्रयोजन तो प्रतिकूल नहीं है, तो इसलिए उनको सहमत करने में अपने को कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। और इसका दो न्याय और ये भी है कि जब हम हमारे आत्मा का अनुभव करते हैं तो उस त्रिकालीय अस्तित्व में एक समय के आश्रव भाव कर्म का अस्तित्व पाया नहीं जाता, या है नहीं इसलिए अनुभव में आता भी नहीं है। अगर त्रिकालीय आत्म स्वभाव में जो भावकर्ता का अस्तित्व होता तो त्रिकाली का अवलंबन के साथ उसका अवलंबन छोड़ा नहीं जाता, इसका अनुभव के साथ उसका अनुभव भी छोड़ा नहीं जाता, उसका अनुभव हो ही जाता, लेकिन ये वस्तु स्थिति है ही नहीं। ये वस्तु स्थिति नहीं है उसी को दर्शाने के लिए, उसकी सत्ता उसमें नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सत्ता नहीं है। जब सत्ता नहीं है तो प्रदेश कहां से होगा, यही कहने का अभिप्राय है। तो जिसको अस्तित्व और सत्ता से उपवाद ग्रहण नहीं हो सकती है उनके लिए ये कहने में आता है कि वहां उनका प्रदेश ही नहीं है, चलो उसका क्षेत्र ही वहां नहीं है, ऐसा कहने को वो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। ये तो एक नान न्याय ज्ञान प्रधान है। अब दूसरा जो न्याय है वो दृष्टि प्रधान है। वो दृष्टि प्रधान इस तरह से है कि दृष्टि का विषय तो त्रिकालीय आत्मा ही है, दृष्टि तो किसी को विषय ही नहीं करती, इसलिए जब दृष्टि का विषय दृष्टि में आता है तब ये दृष्टि के जोर में दृष्टि के बल पर, ऐसा कहते हैं ज्ञानी अपने दृष्टि के बल पर कि आश्रम की सत्ता मेरे में नहीं है, आश्रम के प्रदेश मेरे में नहीं है, अत्यंत भिन्न, ऐसा लिया भिन्न इतना ही नहीं लिया, क्या लिखा है अत्यंत भिन्न। अत्यंत भिन्न क्यों कहा, अगर एक न्याय से देखें तो कथनचित अभिन्न है वो, फिर भी यहां पर अत्यंत शब्द का प्रयोग क्यों, या प्रदेश भिन्नता के बाद क्यों, तो उसके पीछे हेतु यह हेतु यह है कि हमें इससे हमारा पिंड छुड़ाना है, अनादि से इससे एकत्व हो गया, भाव कर्म से एकत्व होने से द्रव कर्म और नो कर्म से छूट सकते नहीं। जब भाव कर्म से एकत्व हो गया तो द्रव कर्म और नो कर्म से एकत्व हो ही जाएगा, अनिवार्य रूप से होगा। अगर भाव कर्म से एकत्व छूटा तो द्रव कर्म और नो कर्म से एकत्व स्वतः ही छूटता, इसलिए वेद ज्ञान ना से करवाया, भाव कर्म से वेद ज्ञान करवाया। भाव कर्म नहीं लेकर के द्रव कर्म कोई ले लेते हैं, लेकिन द्रव कर्म और नो कर्म की बात तो कैसे की गाथा में आई भी है, तो ऊपर की गाथा में भाव कर्म सुधारे तो द्रव कर्म लेने की अर्थ विकल्प करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए यहां इससे अपना संबंध छोड़ देना है, क्योंकि वो अभाव करने लायक है, नष्ट करने लायक है, और इतना वजन आए बिना, इतना जोर आए बिना इससे हमारा एकत्व छूटने का अवसर नहीं आता, यही कारण है इसके पीछे, इसी कारण से यहाँ प्रदेश भिन्नता की बात आई है। तो अध्यात्म की रुचि वाले को ये बात अधिक पसंद भी आ जाती है कि अच्छा इसका उद्देश्य कोई एक अपेक्षा से भिन्न होने पर भी भिन्न कह दिया, गजब की बात अच्छी कर दी, गजब की मैंने अच्छी गजब की बात कर दी, जैसे ऐसी बात बहुत ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कही है। धर्मदास दीक्षुल्ला देखिए इनके अपने आत्मकथा में भी उन्होंने ये बात लिखा है, अपने ग्रंथ में भी लिखा है, में ज्ञान देने का होना शुद्ध था। तो क्या कहते हैं कि मैं तो सप्तम द्रव्य हूं, क्या लिखा उन्होंने, तो जिनागम में छह द्रव्य से कोई सप्तम द्रव्य तो केवली ने भी देखा नहीं है, तीर्थंकर केवली ने कोई सप्तम द्रव्य देखा ही नहीं है, है ही नहीं कहीं। तो फिर ये सप्तम द्रव्य की बात कहां से आई, ये बात यहां से आई कि तो जाति अपेक्षा से छह द्रव्य है, लेकिन मुझे छह द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं रखना है, मुझे छह द्रव्य से कोई संबंध नहीं रखना है, मुझे तो मेरे आत्मा से के अलावा कहीं बाहर जाना ही नहीं है, छद्रव्य भले ही अपने आप में आत्मा हो मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं तो छह के अलावा कोई संबंध नहीं रखता, मैंने छह से भिन्न हूं, मैंने जगत के सभी पदार्थ से मैं सारा विश्व जो है वो मेरे हिसाब से शून्य है। ये बात भगवान के दिव्य ध्वनि में आई तो वेदांतियों ने यहां से ये बात इतने जोर से पकड़ी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो कहने लगे, क्या कहने लगे, एक ब्रह्म ही सत्य है सारा जगत मिथ्या है। तो वो लोग जिस तरह मानते हैं या जानते हैं ऐसी बात, लेकिन आत्मा के आधार लेने में वो बात भगवान के मन में आई है वो जरूर है, समझकर होने से अन्य मत हो जाता है, क्या एकांत हो जाने से, या आत्मा का आधार लेने के लिए जो बात कही अगर उसी बात को लेकर के हम आत्मा का आधार नहीं लेते हैं तो ये बात हमारे लिए झूठी है या अन्य बात है। इसलिए सुखारू देव कहीं ऐसे भी कहते हैं कि निश्चय की जब बात करना हो तो कुछ निश्चय स्वरूप के आश्रय कुछ अंश में आश्रय के प्रयास के साथ ही करना, वैसे मत करना। क्या सूचना दी, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया मार्गदर्शन है कि निश्चय के विषय का ज्ञान में पढ़ने में आएगा, लेकिन उसके पर जोर अगर वाणी में देना है, भाषा में आती है वो बात, तो भाव में भी आनी चाहिए। वो भाव कैसा होना चाहिए कि आश्रयभूत तत्व होने से कुछ अंश में आश्रय करने का प्रयास के साथ ये बात को करो, अगर इसके बिना तुम कर्म करने को जाओगे तो निश्चय आभास में चले जाओगे। इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया इस तरह से, यहाँ भी आत्मा का आधार लेने की जब बात चली है, आधार आधे संबंध से ही जाता का टीका शुरू किया है, तो हमारा आधार आधे संबंध हमारे आधार स्वरूप में ही है, हमारे बाहर हमारा आधार आधे संबंध कहीं भी नहीं है, भले बगल में भाव कर्म रूप चारित्रम के पर्याय में कुछ भी गड़बड़ हो, ये रोग है, रोग को हम अपना अंग में होते हुए भी अंगभूत मानते नहीं है, वैसे ही रोग तो शरीर के अंग में होता है फिर भी वो अंगभूत माना नहीं जाता, इसी ठीक इसी तरह उसका बड़ा विषय करके ज्ञानियों ने आचार्यों ने स्व आश्रय कराया है, क्या कराया है, स्वयं का अवलंबन लेने के लिए बात कही है। तो अध्यात्म के विवेचना में ये बात बहुत सुंदर है, वहां हमें आदम की अपेक्षा से विचार करना ये इस बात को दिली करने के है, दृष्टि प्रधान बात बहुत आई है, तो एक जगह उन्होंने स्पष्टीकरण दिया बात को, तो स्पष्टीकरण देने का कारण हो गया, तो बहुत जोर से दृष्टि के विषय को और दृष्टि को प्रतिपादन करते थे अपनी चर्चा में, तब वो प्रसिद्ध नहीं थे कि वो ज्ञानी है, दृष्टिवंत है, दृष्टि संपन्न है, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है हमारे समाज में, उस सुनने वाले में किसी को ऐसा लग जाता था कि बहुत लोग सुनने को यहाँ आ गए हैं, अगर दो चार आदमी ने वो बात नीचे करके वाले कोई स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब 25-50 आदमी और मैंने जब सुनने को आगे थे तो उसको किसी को ऐसा लगता था कि कोई यहाँ निश्चय और आस्था अनुमान करने के इतनी तिखी और जोर वाले प्रश्न की बात आती है, निश्चय की बात आती है तो किसी को लग जाएगा क्योंकि वो तो वहां तक कहते थे यहाँ तो आश्रम समर में प्रदेश भेद दिया है, वो तो कहते थे कि द्रव पर्याय में प्रदेश भेद है, जो द्रव का प्रदेश है वो पर्याय का नहीं, पर्याय का है वो। गुरुदेव इस बात को समर्थन करते हुए कहते थे छिंदास में पंडित बीचंद जी साहब ने 95 नंबर के पेज पे वो बात कही है 95 स्थान में, तो समर्थन दे देते दूसरे ज्ञानी का, लेकिन उसको एक ज्ञानी कहे वो सब ज्ञानी कहे तो आधार मिल जाता है तो दे देते हैं, नहीं दे देते तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो स्पष्टीकरण कोई देने लगते हैं कि एक बात दृष्टि और कक्षा से प्रसाद बनाते हैं, ज्ञान शिक्षा से ऐसी बात भी है, वो बात समझ के रखना है, सब उन्होंने बार बार जब ये बात चलने लगी स्पष्टीकरण की, उन्होंने ये बात कही कि हम जिस बात जिस हेतु से कर रहे हैं उस बात में अपेक्षा लगा करके ढीला कर देते हैं, उस टोन को उस टोर्स को कोई शिथिल कर देते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, इस आदमी को तो अखरती है, इसको क्यों ढीला किया जाए, इस बात पे जो क्रोध है जोर है उसको क्यों ढीला किया जाए, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, वो दृश्य प्रकाश में दिया था। तो जब इस ग्रंथ का संपादन करते थे और हमको भी ये विकल्प आता था कि ये ग्रंथ तो समाज के सारे सर्वसाधारण के हाथ में जाने वाले हैं, तो हमको तो परिचय है इसलिए हमें कोई शंका नहीं होती है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या इनके धर्म को भी ग्रहण कर सकते थे क्योंकि हम उनके परिचय में थे, लेकिन सर्वसाधारण को ये समझेंगे नहीं, इसलिए हमने कहीं जगह ब्रैकेट लगाया है, तो ब्रैकेट लगाते वक्त हमको बहुत मंथन चला, इस ढंग का मंथन चला कि कहीं हम इनके अभिप्राय विरुद्ध तो कार्य नहीं कर रहे, अपेक्षा खोल करके अगर हम ब्रैकेट में इसका स्पष्टीकरण देने चाहेंगे तो अपनी भाषा में उन्होंने जो फोर्स से बात किया है वो फोर्स को नहीं छूटता है, तो बार बार हम ब्रैकेट में लिखते वक्त उस बात को संभालते रहते थे कि फोर्स को कहीं नहीं छूटता है ना, फोर्स को नहीं छूटता है ना, क्योंकि ये इनका स्वयं का अभिप्राय विरूपित प्रवृत्ति हो जाएगी, ये नहीं करनी चाहिए, ये बात को हमें बहुत बार बार थोड़ा सतर्क होकर के देखनी पड़ेगी। तो ऐसी बात है कि वहां जैन कोई भी अध्यात्म ग्रंथ में ऐसी बात आती है तो दूसरी अपेक्षा ज्ञान में यौन रूप से रह जाती है, वास्तविक परिस्थिति परिणाम की क्या रही है कि जो आगम की अपेक्षा है वो ज्ञान में गौण रूप से रह जाती है, तो गौण हो जाती है, इसका मतलब ये कि अभी इसका कोई आधार हमें लेना नहीं है, तो एक जानने के बाद अवलंबन लेने के बाद नहीं है। अपने यहाँ के स्वाध्याय में भी 3-4 दिन पहले वो बात चली थी कि हम जो शास्त्र स्वाध्याय बहुत करते हैं दूसरी क्रिया में हम लोग नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय की क्रिया में तो फंसे हुए हैं, तो हमें सतर्क रहना चाहिए इस विषय में कि कौन सी बात अवलंबन के लिए आ रही है या कौन सी बात सिर्फ जानकारी के लिए आ रही है, दो खाता खतावनी के लिए रखना है, जो अवलंबन लेने योग्य बात है तो इसके खाता में इस खाना में जाए, जो बात को जानने वाला खाता है वो बात इस खाना में खा लेना। जैसे क्रम तत्पर्य की बात चलती है तो ये विषय वास्तव में द्रव्य प्रधान है, पर्याय प्रधान नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय का विषय वास्तव में पर्याय प्रधान नहीं है। गुरुदेव ये कहते हैं कि मैं नायक हूं, ऐसा हमारा नायक स्वरूप का अवलंबन जब हमें आता है तो सभी पर्याय की उपेक्षा हो जाती है। क्या होता है? सिर्फ शुभ शुभ की नहीं, शुद्ध पर्याय की भी उपेक्षा हो जाती है, क्षणिक परिणाम धारा की ही उपेक्षा हो जाया करती है। तो उस उपेक्षा से हम कह देते हैं कि वो अपने कर्म में जो आने वाली होगी वो आएगी, ये जानकारी का विषय है, अवलंबन लेने का विषय नहीं है। तो शास्त्र अध्ययन करने वाले को अध्ययन के दौरान ये कथा में अगर नहीं चली तो जो जानकारी का विषय है वो अवलंबन का विषय हो जाएगा और अवलंबन का विषय छूट जाएगा। ऐसा होने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी और नुकसान होने की संभावना बहुत है। वहां उल्टी होती है, यहां पर भी आगम की अपेक्षा का दृष्टिकोण छोड़ करके अगर समझेंगे तो ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी और यहाँ जो प्रयोजन है वो समझ में आएगा। और इसके विषय में अगर हमें प्रयास करना होगा तो समझ के बाद प्रयास होगा। जब समझ में ही हमको संतोष यानी हमको समाधान नहीं कैसे बात करते हैं जाके, तो प्रयास करने का तो फिर आगे की बात है तो अवकाश ही नहीं होगा। इसलिए सही समझ से आगे के इसका उसी दिशा का जो प्रयास है वो चल सकता है। हम आगे जाते हैं, कोई और प्रश्न हो थोड़ा और विचार कर इसलिए उपयोग में क्रोधादि कर्म तथा नो कर्म नहीं है और क्रोधादि में कर्म में तथा नो कर्म में उपयोग नहीं है। ये तो वास्तविक परिस्थिति है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तो ने होते हैं लेकिन उपयोग में इसकी सत्ता का प्रवेश नहीं हो सकता। होते हैं तो क्या करना? फिर उसकी उपेक्षा करना, उसका निषेध करना, उसका अवलंबन देना नहीं। इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आगे संबंध नहीं है। पारमार्थिक माने वास्तविक आधार आगे संबंध नहीं है। क्यों? कि ज्ञान के कारण से द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की सत्ता नहीं और द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के कारण से ज्ञान की सत्ता नहीं है। वो ने है इसलिए इसका ज्ञान है, ऐसा भी नहीं है। अगर वो नहीं होते तो इसका ज्ञान नहीं होता, ये तर्क ज्ञान लागू नहीं होता। क्योंकि ज्ञान अपना अस्पताल में जिस आकृति से होने वाला हो उसी आकृति से होकर के रहता है, उसमें देह का एक अंश भी नहीं है। तो आधार लेने का तो सवाल ही नहीं होता, एक अंश भी नहीं है, किसी अपेक्षा से कोई अंश नहीं है। लेकिन लगता है ऐसा, काला रंग ज्ञान में काला ही दिखता है, पीला रंग पीला दिखता है। काला रंग पीला क्यों नहीं दिखा? इसलिए देह के आधार से ज्ञान हुआ, वास्तविकता ऐसी है, बिल्कुल वास्तविकता ऐसी नहीं है। उसको पारमार्थिक शब्द ने कहा कि पारमार्थिक संबंध हमारा संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आवेदत्व अपने अपने नहीं है। प्रत्येक वस्तु का यहाँ तो वस्तु इसको बोल दिया है, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आवेदन अपने अपने नहीं है। इसलिए उपयोग उपयोग में ही है और विरोध विरोध में भी है। इसलिए उपयोग तो उपयोग में है, तो फिर विचार करने की बात नहीं है। उपयोग का उपयोग में अनुभव करने की बात है। इस विषय में इस बात का थोड़ा विचार करें, इसलिए किस तरह से स्वाध्याय करते हैं, उसकी तलाश कर सके, उसको चेक कर सके, प्रकृति हमारी सही है या नहीं। प्रायः हम लोग जो भी हमारे सामने शास्त्र के वचन आते हैं, ज्ञानी के वचन आते हैं, जिनके हम स्वाध्याय करते हैं, उसके शब्द के अर्थ समझते हैं, उसके भाव को किसकी अपेक्षा भी समझते हैं, और हमारे को आते हैं कहने का अभिप्राय क्या है वो भी समझते हैं। अगर कोई विशेष अध्ययन वाला हो तो दूसरे पत्र से इसका क्या तफावत है, डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसको भी नयार्थ कहते हैं, नयार्थ भी समझते हैं। ये सब जो है की भूमिका में चलने वाली ज्ञान की प्रवृत्ति अवश्य है, लेकिन उतने स्वाध्याय की प्रवृत्ति में ज्ञान का व्यापार होना तो पर्याप्त नहीं है। इससे आगम विरुद्ध को समझ नहीं होगी, आगम अनु को समझ हो सकती है। अगर हमारे ज्ञान में कोई आगम विरुद्ध विराजना नहीं हो पूर्व काल में, तो आसानी से भी हम आगम के अनु को हमारे विचारधारा को बना सकते हैं। अगर कुछ हमने मुझे संस्कार डाले होंगे तो पूरा कष्ट भी पड़ेगा, देर लगेगी समझ में आने में, थोड़ी तकलीफ भी, कठिनाई भी लग सकती है। लेकिन हमें सातों स्वाध्याय में जिसके आगे जाना है वो तो इस तरह है कि जो बात हमारे समझ में आती है वो बात हमारे अनुभव में आती है या नहीं। अगर हमारे अनुभव में नहीं आती है तो हम हमारे अनुभव में आए ऐसा कोई प्रयास स्वाध्याय के दौरान होता है तो ये स्वाध्याय पद्धति सही है, उसको अनुभव पद्धति कहते हैं, वो सही पद्धति है। इसलिए वो सही पद्धति है कि लिखने वाले जो पुरुष है, ज्ञानी है, वो अनुभव से लिखते हैं, अनुभव में आकर के लिखते हैं, अनुभव पूर्वक लिखते हैं, तो उसमें जो अनुभव का पहलू है वो छूट नहीं जाता। जो इनका रहस्यभूत पहलू है और इसकी जो खास बात है वो तो अनुभव की है, ये धर्म ही अनुभव प्रदान है। जापान के ऐतिहासिक ऐतिहासिक विद्वान की बात है, ऐसा कोई जापान से विद्वान आया होगा जो इतिहास भी दौड़ा, तो हिंदुस्तान के इतिहास को खोज करते करते गया तो उन्होंने आखिर में ये बात थी कि जैन धर्म की खोज करते हुए मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि जैन धर्म है वो अनुभूति प्रधान धर्म है। क्या लिखा उन्होंने, जैन धर्म है तो अनुभूति प्रधान धर्म है। बुद्ध बहुत खुश हो गए, इतना परदेशी आदमी है तो उसने यहाँ तक उसकी नजर पहुंचाई कि अनुभूति प्रधान बात है। तो अगर हमको इस अनुभूति प्रधान शास्त्र को पढ़ते हुए अगर अनुभव का पहलू ही छोड़ दे तो भले ही हमारे समझ शास्त्र के अनुकूल हो, आगम के अनुकूल हो, पर यही तो रहस्य है, सब शास्त्रों का तो कोई रहस्य है तो यही है। तो ये बात हमको यहां से स्मृति में आई, स्मरण में आई कि इसलिए उपयोग उपयोग में ही है। ये तो आपको यह निकाला था गाथा का जैसे उपयोग उपयोग में है, तो हम क्या शब्दार्थ से ही समझ करके संतुष्ट हो जाएंगे, क्या भावार्थ को ही सुख करके संतुष्ट हो जाएंगे? स्वाध्याय होना चाहिए ऐसा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। हमारा उपयोग चलता है तो क्या हम अनुभव करते हैं? उपयोग उपयोग में है उस वक्त हमारा उपयोग को हम उपयोग से पकड़ते हैं क्या? पर क्या ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा उपयोग उपयोग में बराबर अनुभव में आता है, हमारा उपयोग का अनुभव उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसा क्या अनुभव हो रहा है? अगर ऐसी कोशिश करने से ज्ञान में होने वाले आने वाले क्रियाकार तिरोभूत हो जाएंगे, और ज्ञान ज्ञानाकार है और ज्ञान ज्ञान में ही है और ज्ञान ज्ञान में ही अनुभव में आता है, ऐसा एक ज्ञान का ज्ञान संवेदन है, इसका आविर्भूत होने का यह प्रयास हो जाएगा। सिर्फ वो वांचन नहीं रहेगा, सिर्फ स्वाध्याय नहीं रहेगा, किंतु एक ज्ञान का ज्ञान वेदन का आविर्भाव होने का एक हमारा प्रयास के साथ साथ होगा, और उसी प्रयास से हमें हमारा पारमार्थिक कल्याण होने का एक रास्ता जो है यहां से खुलता है, खुलता है। अनुभव कोई यहां से कर सकते हैं कि अनुभव को त्रिकालिका करना है, उपयोग को पर्याय है। हमें तो पर्याय का अनुभव नहीं करना है, पर्याय में सेवा पर्याय दूसरा अनुभव कोई नहीं सकता। कर्तव्य का अनुभव हो सकता है किसी को, देखो स्वदेवता ये प्रस्तुति है। जब उपयोग कर्तव्य का आलम्बन लेता है, आधार लेता है, तब तो ऐसा बोला जाता है कि वो कर्तव्य का आलम्बन लिया, उसने कर्तव्य का आलम्बन लिया। वास्तव में ये मिथ्या इतिहास है, ऐसा बन सकता नहीं है, लेकिन ऐसा एक अनुभव उसको होता है कि मुझे ठंडी लगी, मुझे गर्मी लगी, मुझे ये मिठाई मीठी लगी और ये दवाई कड़वी लगी। लगता है या जानने में आता है? यहां पर एक प्रश्न अंदर में चेक करने का है, तलाश करने का है। वेद ज्ञान का प्रयोग का पूर्व प्रोसेस जब वो तलाश माना है कि हमें लगता है या जन्मात्र को ज्ञान में लिए होता है, लगने में अनुभव है। अगर हम कहेंगे कि ठंडी लगती है तो ये नहीं जानते, ठंडी ज्यादा है या कम है उसका ज्ञान, लेकिन लगती है वो बात सरासर दुख है, क्यों लग सकती है? ये वस्तु स्थिति है। तो बात आचार्य महाराज ने चर्चा करने का कि द्वाराणु प्राणु प्रमाणु खंडाणु में कही कार वहां ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि जैसे ठंडी गर्मी का लगना अशक्य है, अशक्यत्वा ऐसा शब्द, वैसा ही राग का क्रोधादि का ज्ञान में लगना अशक्य है। वेद ज्ञान वहां भी ऐसा ही करवाया है, हर विकार का वेद ज्ञान ही करवाया है, लेकिन एंगल अलग अलग पसंद किया है उसको स्पष्ट करने के लिए, अशक्य समझ लिया वही भी। वैसे निगोल से लेकर के सिद्ध पर्याय तक हर दिन को अपनी पर्याय का ही अनुभव होता है। का अनुभव नहीं होता, लेकिन द्रव का आलंबन आता है कि मैं ये हूं, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है, ये विदोपचार है कि हमने इसको द्रव का आलंबन लिया। किंतु प्रवचन साहब के 172 व्याख्या के 20 नंबर का बोलने की बात स्पष्ट कर दी है कि जो अन्वय रूप द्रव्य है, जो प्रत्यभिज्ञान का कारण है, वो काओ वो काओ वो काओ, ऐसा प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत जो द्रव्य है, उससे नहीं आलिंगित, नहीं अवलंबित, नहीं आलिंगित, नहीं स्पर्शित, ऐसे जो शुद्ध पर्याय है वही आत्मा है। उसको पर्याय नहीं करके, नहीं कह करके क्या कहा, उसको आत्मा कहा। क्या रहस्य है जो उपयोग उपयोग में है और अपना वेदन अपने में है, जब वस्तु स्थिति ऐसी है, तो ये किस बात का ये चक्कर चलता है कि हम संसार में पकड़ते हैं? क्या कारण है? कहते हैं कि स्वयंपणा उपयोग को छोड़ करके दृढ़ कर्म भाव कर्म क्या नहीं हुआ कुछ रहता उधर बैठे परमात्मा है सात सौ तैतीस कहते हैं कि स्वयं रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा आत्मा की क्या परिभाषा में नहीं स्वयं रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है। यही भेद ज्ञान की कला है, यही तिरने की कला है। तो क्या हुआ है हमारा कि हमने कभी भी हमारे उपयोग को स्वयं रूप से लक्ष्य में नहीं लिया, अनुभव में नहीं, पहले लक्ष्य में लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए। तो उपयोग उपयोग में ही है, ऐसा एक वचन का स्वाध्याय करते हमें भीतर में सावधान हो जाना चाहिए कि क्या हमारा उपयोग उपयोग में चलता है, क्या अनुभव कैसे चलता है, अनुभव के दृष्टिकोण से क्या चलता है। अंतरंग में सूक्ष्म अनुभव दृष्टिकोण से ये देखने की चीज है जिससे भेद ज्ञान स्वतः ही होता है। और ये भेद ज्ञान करने में क्रोधादि से भिन्न करने में दारुण रूप से भेद ज्ञान करना ये पीछे की तरफ कहेंगे आचार्य भगवान। क्या कहेंगे? विदारण करना है, शीर फाड़ करना है। विदारण करना मैंने क्या, कुछ भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख करके। ये विगत तो आत्मा का था, मैं तो चिंतन करता था आत्मा का, तो ये आत्मा का चिंतन था, ये तो पुण्यापुण्यपुण्यपुण्यपुण्य का विकल्प होता है आत्मा का। तो आत्मा का चिंतन का कौन सा विकल्प होता है? ये पुण्यापुण्यपुण्य होता है। तो आत्मा का चिंतन के प्रति तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे कि नहीं? दारुण धारण है, तीव्रता से विदारण कर दिया कर ले उसका। ये तो सत्य रखना है। 130 गाथा का उसको कहने का अर्थ है कि वहां कोई भी भाव हो, क्रोध तो खैर अशुभ परिणाम है, उसकी तो दया हम रखेंगे ही नहीं, लेकिन शुभ भाव की दया हमको रखने की नहीं है कि बेचारा का क्या हो, शुभभाव का जो होगा तो होगा, अब तो मेरे परमात्मा का भजन मुझे करना है। ये शुभभाव परमात्मा में नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। सत्ता तो क्या है, इसकी गंध भी नहीं, इसकी परछाई भी वहां नहीं आती, उतना ही दूर है, बहुत दूर है, किंतु दूर है। जितना भी प्रयोग से देखने में आएगा उसी को मेरे ज्ञान कहते हैं। क्या होती है एक सूक्ष्म ज्ञान में तो हम कहते हैं कि शरीर पर है, बिल्कुल जड़ है, हमने बराबर आंखों से यानी के वजन से जाना है बराबर, लेकिन जब असाता आती है, पीड़ा होती है, तब इसका अनुभव स्वयं से करने लग जाते हैं। तो उसी वक्त वो जो धारणा है कि शरीर को पर है, नो कर्म है इसलिए पर है, वो धारणा का कोई उपयोग, कोई सदुपयोग, कोई धारणा का चरितार्थ कोई नहीं होता। इसलिए जो हमारी समझ है उसको हम अनुभव में, अनुभव के काम में ले लें तो ये समझ समझ के चरितार्थ बना है, पार्थ बना है, वरना काम में आने वाली बात नहीं रही तो पीड़ा के समय में अशांति और दुखता होगा होगा और होगा। हमें दुख मिटाना है, दुख मिटेगा नहीं तो समझ और गैर समझ में क्या अंतर होगा? जिसको समझ नहीं है वो भी दुखी है और जिसको समझ हुई वो भी दुखी रहा, तो समझ और गैर समझ में क्या अंतर रहा? कुछ ये परलक्षी धारणा की एक स्थिति होती है तो वो अपने सुख शांति लाने में काम में नहीं आती। धारणा है वो बंद तिजोरी माप है, कैसे धारणा है परलक्षी धारणा बंद तिजोरी माप है, तिजोरी में पैसे हैं लेकिन डॉक्टर और दवाई लाने के लिए चाबी होगी, बिगड़ जाती है, खुलती नहीं है, क्या काम को करे, काम में आती ऐसी परिस्थिति हो जाती है। जैसे धारणा दुख मिटाने के काम में नहीं आई, सुख लाने के काम में नहीं आई तो काम को ज्ञान बेकार हो गया। और ज्ञानी के जो ज्ञान है वो तो खुली तिजोरी में रहता है और मुमुक्षु का भी यथार्थ समझ होती है, ज्ञान नहीं है लेकिन शून्य ज्ञान पहले वाली जो स्थिति है वो है कि जब यथार्थ समझ होती है तो जब ये पीड़ा वेदना आदि दुख का आता है तो ज्ञान उपस्थित हो जाता है, तो ज्ञान हाजिर हो जाता है, ज्ञान का उपयोग उसको करने लग जाता है, उसी को पात्रता कहते हैं, तो यथार्थ और ऐसी पात्रता वाले जीव को प्रतिकूल प्रसंग आए तो इच्छनीय है। क्या हम देखिए सारी दुनिया से उतार क्या है, सारी दुनिया से उतरा है, सारी दुनिया वो चाहती है कि हमें कोई प्रतिकूलता ना आए। अरे हमें दुनिया में बुद्धि पुण्य हो जाए तो फिर आगे कोई प्रतिकूलता ही नहीं होगी, क्योंकि इसका उदय पुण्य हो गया है। ज्ञानी का अभिप्राय ज्ञानी कहते हैं कि अगर मुमुक्षु को प्रतिकूलता नहीं आई तो भगवान ने चाहा, भगवान की कृपा उस पर नहीं है। क्या लिखा है वहां कि उस मुमुक्षु पर भगवान की कृपा नहीं हुई, क्यों कि पात्रतावान जीव के लिए तो प्रतिकूलता का आना इस काम में तिरने के बराबर है। ऐसा लिखा है क्यों कि बहुत पात्रता वाला आत्मा की जीव इतना तैयार हो जाता है, इतना तैयार हो जाता है आने दो प्रतिकूलता को, मैं तो रखने के लिए तैयार हूं, आगे जब भी मेरी परीक्षा होगी, मैं पढ़ा मैं सुना तो मेरी परीक्षा का काल इम्तिहान का काल कौन सा है, प्रतिकूलता आएगी मैं तो इसका इंतजार करता हूं, अगर वो नहीं आएगी तो फिर उपवासा देकर के असाता पैदा करता है, उपवासा करता है, असाता पैदा करने के लिए, पर उस असाता के काल में अपना जो अंतर परिणाम है वो कितना सामने भाव संभाव में रहता है, कितना प्रयोग करते हैं वो संभाव में रहने का, कितना प्रयास होता है कि विज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो बात हम समझे उसका प्रयोग होए ये बात महत्वपूर्ण है। अगर इसका प्रयोग नहीं होवे तो समझ में कोई अंतर नहीं है। बुरा होता है।